हरे कृष्ण। भगवद गीता में भगवान आश्वासन जब देते हैं कि जब जब संकट का प्रभाव या संकट में स्थिति जब जब निर्माण होगी और भक्तों को बहुत तकलीफ होगा तब वह अवतरित होंगे। परित्रणाय साधूनां विनाशाय तु दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में भगवान जो है अवतरित होंगे और जब भी भगवान का अवतरण होता है उस समय विश्व में ऐसी अद्भुत स्थिति होती है कि भगवान के अवतरण से उस स्थिति में जो परिवर्तन आता है वह अनंत काल तक लोग याद रखते हैं। जैसे जब प्रभु रामचंद्र जी अवतरित हुए तो उस समय तीनों लोकों में रावण के अत्याचारों से सब कोई पीड़ित था और इतना दहशत थी रावण के इस काल में कि तपस्वी सब वनों में और गुफाओं में छुपकर तपस्या करते थे और शहरों में गांवों में यज्ञ नहीं हो रहे थे। व्यक्ति अगर पुण्य कर्म करने का विचार भी करता था तो बहुत डर जाता था कि कहीं रावण को पता न चल जाए। देवता लोग अपनी कृपा नहीं दे रहे थे क्योंकि उनके लिए यज्ञ में आहुति नहीं चढ़ाई जा रही थी और देवताओं की संपत्ति भी रावण ने हड़प ली थी। तो जब भगवान रामचंद्र जी आए और कुछ समय बाद उन्होंने रावण का वध किया तो देव नर जो सब जितने भी लोग थे सब उनकी स्तुति कर रहे थे मानो जैसे कि कोई बहुत बड़ा आपत्ति बहुत बड़ी आपत्तिजनक स्थिति उनके जीवन से हट गई हो और उस परिस्थिति का आज भी उल्लेख किया जाता है। उसी प्रकार से जब श्री कृष्ण अवतरित हुए तो उन्होंने भी कंस के अत्याचारों का अंत इस प्रकार से किया और पांडवों के द्वारा जो कौरव वंश का की उनके द्वारा जो अत्याचार हो रहे थे उसकी समाप्ति हुई। तो उस समय जो विश्व में शांति हुई और लोगों को धर्म के अनुष्ठान करने में सुविधा जो प्राप्त हो गई उसे आज भी याद किया जाता है। तो वास्तव में जब भगवान अवतरित होते हैं तो पूरे विश्व में और कालांतर में भी लोग उनके अवतरण को याद रखते हैं क्योंकि परिवर्तन ही इतना विशेष हुआ था। ऐसा नहीं है कि वाल्मीकि जी ने या व्यासदेव ने अपने मन से कोई कहानी लिख दी हो, ऐसी बात नहीं है। जो इतना लोगों के जीवन में परिवर्तन आया या उसका लोगों के जीवन पर असर पड़ा उससे प्रभावित होकर वाल्मीकि जी ने भगवान रामचंद्र जी के चरित्र पर आधारित रामायण का वर्णन उसमें किया और महाभारत में भगवान कृष्ण के चरित्र पर और पांडवों के चरित्र का जो है उल्लेख किया गया। तो कृष्ण लीला, राम लीला काल के उस अवधि को दर्शाते हैं जहां पर अत्याचार बहुत हो रहा है, और अक्सर जहां पर अत्याचार होते हैं वहां पर देखा जाता है कि जैसे जैसे अत्याचार करने की वृत्ति बढ़ती है वैसे वैसे धर्म के प्रति लोगों का ध्यान कम होने लगता है। अत्याचार ये बड़ा ही एक सरल शब्द है। जब अति आचार, आचरण तो हर कोई करता है लेकिन जब वो अति हो जाता है, अति का अर्थ होता है दूसरों को तकलीफ देता है, तो उसको अत्याचार कहते हैं। तो कौन से ऐसे कार्य होते हैं जो अति कर दे? ईशोपनिषद में समझाया गया है कि भगवान के प्रयोजन से और जो इस संसार का नियोजन है उसके अनुसार सबको अपने अपने आवश्यकता अनुसार वस्तुएं प्राप्त हो जाती, कहीं कोई कमी नहीं है। ईशावाश्यम इदम जगत इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत, ईशावास भगवान की इच्छा से उनके प्रयोजन से इदम सर्वम जगत, यहां पर इस जगत में किसी चीज की कमी नहीं है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, इसलिए जो हमारी आवश्यकता है उसके अनुसार हमने चीजों का प्रयोग किया तो कहीं किसी को कमी नहीं आएगी। लेकिन समस्या यह है कि हम कभी अपने आवश्यकता पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, हमें ध्यान रहता है कि दूसरों को कितना मिल रहा है। हम ये ध्यान देते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, जैसे अगर किसी कक्षा में विद्यार्थी बैठे हैं तो अगर एक विद्यार्थी बहुत ध्यान से सुन रहा है तो पीछे के दो विद्यार्थी उसको तकलीफ देने का प्रयास करते हैं, उसको चींटी काटेंगे या उसके ऊपर कुछ फेंकेंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उनका ध्यान ही लग रहा है, वो दूसरों का भी ध्यान भंग करना चाहते, इसे कहते हैं अत्याचार वृत्ति। देखिए जब व्यक्ति का मन किसी चीज में लगता है उसका ध्यान कहीं पर केंद्रित रहता है तो किसी और को तकलीफ नहीं देता। ऐसे नहीं कि चार लोगों को और बुलाने जाते तुम भी आकर देखो तुम भी आकर देखो, उस समय उसका मन जो है उसमें लगा हुआ है वो ध्यानग्रस्त है। लेकिन जब किसी का मन किसी चीज में लगता नहीं तो स्वयं भी बहुत विचलित होता है और दूसरों को भी तकलीफ देता है। तो बहुत आवश्यक है यह समझना कि भगवान अत्याचार बंद करने के लिए अवतरण देते हैं, और उसी प्रकार से जो भी धार्मिक क्रियाएं होती हैं वो सारी क्रियाएं हमारे हृदय में जो ये वृत्ति होती है अत्याचार करने की उसके शमन के लिए होता है। अगर हम धर्म के अनुष्ठानों का पालन कर रहे हैं लेकिन तकलीफ देने की वृत्ति अगर नष्ट नहीं हो रही है, ध्यान हमारा धार्मिक क्रियाओं में नहीं लग रहा है, तो फिर वो सारे धार्मिक अधार्मिक अनुष्ठान करके कोई लाभ नहीं हुआ। वो तो बस एक आदत है जो लग गई है। धार्मिक कार्य का की सफलता तभी होती है जब हृदय से अनर्थ गायब होते। हृदयंतस्थो या भद्राणी विधून होती, हृदय के अनर्थ नष्ट होने चाहिए। इसलिए अगर हम धर्म के अनुष्ठानों का पालन कर रहे हैं तो मन जो है शांत होना चाहिए, इंद्रियां जो हैं वो शांत होनी चाहिए, एकाग्रता आनी चाहिए, मन भटकना नहीं चाहिए। जैसे महाभारत में उदाहरण दिया जाता है कि जब सबसे पूछा गया क्या आपको अपना ध्येय जो है, जो लक्ष्य है वो दिख रहा है, सबने कहा हाँ, लेकिन खाली अर्जुन को अवसर दिया गया कि वो तीर चलाए, क्योंकि वास्तव में खाली अर्जुन को लक्ष्य दिख रहा था, उसका ध्यान कहीं और भटक नहीं रहा था, इसलिए वो सफल हुआ। 5 पांडव 100 कौरव कोई सफल नहीं हुए, अर्जुन सफल हुआ। अन्य उदाहरण देते हैं कि सोचिए कि पांडव और कौरव जो हैं सब करताल बजाना सीख रहे हैं, और परीक्षा ये थी कि कौन सबसे अच्छे से करताल बजाएगा एक ताल पर, एक भजन में। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा कि क्या तुम्हें समझ में आ गया कि लय क्या है? सबने कहा हाँ। फिर उन्होंने पूछा कि कैसे बजाओगे बताओ, और 5 मिनट का अवसर दिया सबको कि बजाने का, और हर एक व्यक्ति जो है हर 15 सेकंड में करताल का धुन बदलता है, मैं ऐसे बजाऊंगा, फिर मैं फास्ट करूंगा, फिर उसको मैं 2 ताल में करूंगा, फिर 3, अपनी शैली दिखाना चाहता है। अर्जुन जो है वो भजन के लय को समझकर एक ही ताल में बजाता है। तो द्रोणाचार्य जी कहते हैं अर्जुन तुम करताल बजाओगे, बाकी 104 लोग करताल नहीं बजाएंगे। क्यों? क्योंकि अर्जुन भजन का लय समझकर करताल इसलिए बजा रहा था ताकि उसमें कोई बदलाव ना हो, बाकी लोग सिर्फ अपनी शैली दिखाना चाहते थे। तो जब ध्यान किसी विषय पर लगता है तो हम अपने लक्ष्य को समझ जाते हैं ठीक से कि लक्ष्य क्या है, लेकिन जब ध्यान किसी विषय पर नहीं लगता तो हमको बाकी सब चीज दिखाई देने लगते, नहीं ऐसा भी है, ये भी है, वो भी है। तो भगवान ऐसे वृत्तियों को शमन करने के लिए अवतरण लेते हैं कि मन में इतना जो अनेकों विचार आते हैं जिससे कि मन हमेशा भटकते रहता है, शांत नहीं रहता, भगवान का अवतरण होता है कि इन सारे विचारों को नष्ट कर दें। और ऐसा नहीं कि ये विचार हमेशा गलत होते हैं, विचारों में गलती नहीं होती, प्रवृत्ति में गलती होती है। इसलिए जिसकी प्रवृत्ति गलत है उसको विचार भी गलत आते हैं, और जिसकी प्रवृत्ति अच्छी है उसको विचार अच्छे आते हैं। और एक ध्यान योग्य बात यह है कि जिसकी प्रवृत्ति गलत है उसके मन में अच्छे विचार भी आ जाएं तो भी वो विचार जो हैं उससे गलत कार्य करवाते हैं, क्योंकि वृत्ति गलत है। जब भगवान कृष्ण अवतरित हुए तो कंस को बड़ा भय था, कंस को अपनी मृत्यु का बड़ा भय था, अपनी मृत्यु को टालना चाहता था, उसे लगा कि अभी नहीं मरना चाहता, मैं बाद में मरूंगा, और उस समय भी देखा जाएगा कि मरना है कि नहीं मरना है, लेकिन अभी जो मृत्यु लिखी गई है उसको मुझे टालना है। असफल रहा कंस उसमें, क्योंकि समय के प्रभाव को रोकना इतना आसान नहीं है। हां, जितना समय दिया गया उसमें ऐसा कुछ कार्य कर लें कि हमेशा से समय के प्रभाव से, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाएं, यह संभव है। लेकिन जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्च, अगर जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है, कारण कुछ भी हो सकता है लेकिन मृत्यु सुनिश्चित है। और जिसका मृत्यु हुआ उसका जन्म निश्चित है। जब तक कि हम, हमें जो समय दिया गया है उसमें ऐसा कोई कार्य ना कर लें जिससे कि चक्र जो है छूट जाए, हम इस चक्र से बाहर निकल जाए, जब तक ऐसा कार्य ना कर लें तब तक चक्र में बंध रहेंगे। तो कंस बहुत पराक्रमी व्यक्ति था, उसने बहुत अष्ट सिद्धियां, बहुत अन्य प्रकार के लघु सिद्धियां सब प्राप्त की थी, और ऐसे ऐसे लोगों से उसने दोस्ती बनाई थी कि एक एक जो है परम सिद्ध व्यक्ति था, कोई जो है सिर्फ वायु रूप में, मतलब बड़े ही सूक्ष्म रूप में रहता था, उसका नाम था शकट, कोई जो है इच्छा रूप धारण कर सकता था जैसे पूतना, कोई जो है विशाल सर्प का रूप धारण कर लेता था अघ, कोई विशाल घोड़े का रूप धारण करता था, कोई विशाल गधे का रूप धारण करता था। ऐसे अनेक सिद्धियों वाले लोगों से उसने दोस्ती बनाई हुई थी, संपर्क रखा हुआ था, और उनके ऊपर उसका इतना प्रभाव था, उसने उनके ऊपर इतने एहसान किए हुए थे, इतना उन्होंने उनको अलग अलग तरीके से मदद किया हुआ था कि हर कोई उन बिक चुका था कंस को, कंस ने खरीद लिया था उनको किसी न किसी तरीके से, सब जो है कंस के प्रति शरणागत थे, और एक एक करके कंस ने उन्हें कृष्ण को मारने को भेजा, कृष्ण को समाप्त करने के लिए भेजा, कृष्ण की नगरी समाप्त करने के लिए भेजा, एक एक को, और हर एक जो है अपने कार्य में विफल रहा, हर एक जो भेजा गया कंस के द्वारा सब मारा गया, सब मारे गए, और कंस जो है और बड़ा ही परेशान हो रहा था कि इतना सब प्रयोग हमने कर लिया फिर भी कृष्ण जीवित है, तो किसी के कितने जीवन हो सकते हैं, कौन कोई कितना भाग्यशाली हो सकता है, बड़े से बड़े योग सिद्धि प्राप्त असुरों को मैंने भेजा है, दानवों को मैंने भेजा, राक्षसों को मैंने भेजा, और कृष्ण ने ना तो सिर्फ उनका अंत किया बड़े, बल्कि वृंदावन में किसी प्रकार का कोई भी अत्याचार नहीं हुआ। तो कंस का जो रिकॉर्ड था आजकल अत्याचार करने का, आज तक के अत्याचार करने का, वो रिकॉर्ड अभी बदल रहा था, उसके कोई अत्याचार नहीं हो पा रहे थे वृंदावन में। वृंदावन एक बहुत छोटी सी नगरी थी, तो एक तो उसकी ख्याति कम हो रही थी, लोग कह रहे थे कि कंस का अब राज्य समाप्त हुआ, वो उससे भी अप्रसन्न था, और साथ ही साथ दिन प्रतिदिन जैसे एक एक असुर मारा गया, कंस को सही में विश्वास होने लगा, और विश्वास से उसका डर और बढ़ते गया कि मेरी मृत्यु सुनिश्चित है, और जितना ज्यादा कंस को विश्वास बढ़ते गया कि उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, उतना ही ज्यादा वो अपने ही मृत्यु से डरने लगा, और उतना ही वो प्रयास करने लगा कि उसकी मृत्यु को टाले। जैसे कभी कभी बच्चे होते हैं, उनकी पढ़ाई ठीक से होती नहीं, परीक्षा का समय होता है तो बार बार अपना पोर्शन गिनते रहते हैं, इतना है दो घंटे में इतना करूंगा, या फिर दो घंटे में और इतना करूंगा, और दो घंटे में ज्यादा पढ़ाई नहीं होती, फिर से अपना पोर्शन जो है रिवाइज करता है, देखता है कि कितना है फिर से, और जितना नजदीक समय आता रहता है उतना ज्यादा वो बच्चा जो है व्याकुल होने लगता है, अब क्या करूं नहीं करूं, परीक्षा देने जाऊं क्या, मैं बीमार पड़ गया क्या, मेरा पेट दर्द हो रहा है क्या, मुझे रात भर नींद नहीं आई, उसे चक्कर आ रहा है क्या, क्या कारण दूं मैं, लेकिन परीक्षा उसके लिए अनिवार्य है, और अंततः जब उसे समझ में आता है कि पढ़ाई कुछ हुई नहीं और जो पढ़ाई करने का समय था उसमें व्यर्थ ही ऐसे समय गंवा दिया, तो पूरी तरह से बेचारा त्रस्त हो जाता है। कंस की यही हालत हो गई, पूरा त्रस्त हो गया वो, कम से कम तैयारी कर लेता, भगवत गीता ही पढ़ा होता उसने ठीक से, तो खुश हो जाता कि कृष्ण के हाथों मरना है तो चलो इससे मुक्ति मिलेगी, पढ़ाई ठीक से की नहीं उसने, भगवत गीता क्लास में हमेशा सोता था वो, उसकी पढ़ाई हुई नहीं, जो सबसे जरूरी हुई संदेश दिया गया भगवत गीता में उसे समझ में आई नहीं, बिल्कुल उल्टा हुआ जब बलि, विरोचन पुत्र बलि को पता चला, शुक्राचार्य जी ने बताया कि अरे बलि, हे राजन, यह कोई बटू नहीं है, यह विष्णु आया है रूप बदलकर और तुम्हारा सब कुछ हर लेगा। तो बलि दुखी नहीं हुए। दिवाली के बाद बलि प्रतिपदा हम मनाएंगे। जिस दिन बलि को विशेष उस दिन मनाया जाता है कि बलि महाराज को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई उस दिन। तो बलि जो है घबराए नहीं, उल्टा उन्होंने उपदेश शुक्राचार्य जी को ही कर दिया। उपदेश किया नहीं, उनको समझाया कि अरे गुरु महाराज, आप ही ने तो हमें भगवद गीता क्लास में समझाया था कि अगर सब कुछ विष्णु को अर्पण करोगे तो यही जीवन का परम लक्ष्य है और इससे तुम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। आपने जो सिखाया मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है और आज आप कह रहे हो कि वही क्षण आ गया, सब कुछ विष्णु को सौंपना है, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ त्याग कर विष्णु के शरण में जाओ, तो मैं वही करने के लिए तो जा रहा हूं, तो अब आप क्यों रोक रहे हो? वो क्या होता है, कभी कभी टीचर जो सिखाता है उन्हीं को पता नहीं चलता है कि क्या सिखा रहे हैं। वो पैसा लेने के लिए सिखाते हैं ना। तो शुक्राचार्य जी वैसे सिखा रहे थे कि महीने महीने का पगार उनको मिलते जाएगा और जो भी सिलेबस है सिखाओ, कौन सा उन्होंने परीक्षा देनी। लेकिन उनका शिष्य निकल गया बलि जैसा। बलि ने कहा आपने ये सिखाया है, यहां पर परीक्षा का समय आ गया, उत्तर तो स्पष्ट है। उत्तर यह है कि मैंने समर्पण करना विष्णु को, यह विष्णु हो या बटू हो या ब्राह्मण हो, जो भी हो, अगर विष्णु है तो संतुष्ट हो जाएंगे, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों को संतुष्ट कर मुझे आशीर्वाद मिलेगा, तो मेरी हानि कहां है? तो शुक्राचार्य जी ने कहा मैं बताता हूं तुम्हारी हानि का, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तो बलि महाराज ने कहा ठीक है, परोपकार करने में अगर किसी का श्राप मिल जाता है तो उसमें हानि क्या? अगर स्वयं के जीवन में तकलीफ आती है लेकिन उससे पहले किसी और की हम मदद कर सकते हैं तो हानि क्या? बलि महाराज ने तो तुरंत समर्पण कर दिया वामन देव को। कंस वो कर नहीं पाया क्योंकि कंस भगवद गीता क्लास ठीक से अटेंड नहीं करता था ना, सोते रहता था उसमें। तो कंस को डर बहुत लग रहा था कि जैसे जैसे एक एक राक्षस मारे गए, जब नया राक्षस भेजता था तो कंस समय गिनते रहता था, अरे अभी तक समाचार नहीं आया, बार बार फोन करता था, तुम ठीक तो हो, कृष्ण को मार दिया क्या? उनको बोलता जैसे ही कृष्ण को मारा मुझे SMS कर देना, व्हाट्सएप करना, तुरंत फोन करना, मुझे उसका एक फोटो भेजना तुरंत। मतलब इतना आतुर था कंस कृष्ण को मारने के लिए। तो एक असुर था, बहुत पराक्रमी था कंस। ने देखिए अपने सबसे महत्वपूर्ण प्यादे जो हैं आप बाद में निकालते हो ना, पहले जो है छुटपुट लोगों को मरने देते, ठीक है तू आ गया, तू आ गया, तू आ गया, तू आ गया, तो पूतना आघासुर शकटासुर जो है ये सब जब मारे गए तो कंस के अब जो मुख्य प्यादे थे, जो उनके सही में बहुत शक्तिशाली असुर थे, एक एक करके कोई और चारा नहीं था तो कंस उनको भेजने लगा। तो एक असुर था, वो इतना पराक्रमी था कि देश विदेश लोक परलोक में भी उसका दहशत था और जरूर से ज्यादा आतंक कर भी फायदा किया है। अगर सोचिए कि आपको आतंक मचाना है लेकिन आपके आतंक से कोई शहर में बचा ही नहीं, खाली शहर खाली हो चुका है, तो वहां पर जाकर ढिंडोरा पीट कर क्या फायदा, कौन सुनने वाला है? तो वैसे ही जो बहुत पराक्रमी असुर थे, कंस ने उनको बाद के लिए रोक रखा था कि जरूरत पड़ेगा तो इनको भेजेंगे, जरूरत पड़ गई कंस को। तो कंस ने बुलाया उस असुर को और कहा कि जाओ वृंदावन जाओ और कृष्ण को मार कर आ जाओ। मतलब इतना बेवकूफ था कंस कि अभी भी उसको बात समझ में नहीं आई कि कृष्ण को मारकर आ जाओ इतना आसान काम नहीं है, है ना। जब किसी को लत लग जाती है उसको लगता है कि नहीं लॉटरी में जीतूंगा, कितना भी हार जाता है सोचता अगली बार जरूर जीतूंगा मैं, एक आशाबद्ध हो जाता वो कि अरे इतना नुकसान हो गया लेकिन जब मुझे फायदा होगा तो इतना फायदा होगा, हारते जाता हारते जाता हारते जाता, फिर भी छोड़ता है। कंस वैसे ही था, जुआरी हो चुका था कंस। तो कंस ने भेजा इस असुर को। यह असुर जो है उसने एक विशालकाय बैल का स्वरूप धारण कर लिया, उसका नाम था अरिष्ट। जब अरिष्टासुर को पता चला कि वृंदावन जाकर सब कुछ तहस नहस करना है, कृष्ण को मारना है, वो इतना उतावला हो गया, इतना विशाल था ना वो, कि उसके उसकी पीठ जो है वो आसमान में जो बादल है उसको स्पर्श कर रहे थे, उसकी पीठ। चार कदम ले लेता तो सीधे वृंदावन पहुंच जाता, इतना विशाल काय था। लेकिन वो इतना उतावला हो गया कि मथुरा से दौड़ कर आने लगा वृंदावन की तरफ, कब मैं वहां पर पहुंचूं, इस कृष्ण को पकड़ूं, उसको मार डालूं और पूरा वृंदावन तहस नहस कर दूं। तो दौड़ते हुए वो वृंदावन पहुंचा, और जब वो दौड़ रहा था तो धरती कांपने लगी, मानो जैसे कि भूकंप आ गया हो, और इस प्रकार से धरती कांपने लगी कि बड़े बड़े वृक्ष जो हैं वो हिलने लगे, वो टूटकर जड़ से उखड़कर गिरने लगे। जमुना जी का के में जो जल था वो छलकने लगा, जमुना जी अपना प्रवाह भूल रही थी, उनका मार्ग जो है भटकने लगे वो, और क्योंकि वो वृंदावन की ओर दौड़ रहा था तो लगता था कि सारा वृंदावन जो है अब प्रलय के जल में पूरी तरह से समाप्त होने वाला है। तो मात्र धरती के कंपन से वृंदावन के सारे प्राणी घबरा गए, और इतने घबरा गए कि जितने भी प्राणी जीव जो थे गर्भस्थ थे उनका गर्भपात होने लगा घबराकर, और त्राही त्राही मच गई। लोग कृष्ण को पुकारने लगे कि हे कृष्ण हमारी रक्षा करो, ये भूकंप आ गया है। कृष्ण समझ गए कि कंस ने किसी नए असुर को भेजा है। तब तक अरिष्टासुर वृंदावन के बाहरी परिसर तक पहुंच गए, और वहां पर पहुंचकर वो इतने विचलित हो गया वो असुर कि इसके पहले कि कृष्ण को पता करे उसने सोचा कि वृंदावन को ही थोड़ा सा, मैं वृंदावन के जमीन को जो है नष्ट करता हूं। तो अपने सिंह से वो वृंदावन के जमीन को उखाड़ने लगा, अपना सिंह जो है धरती में धंसा देता, और फिर इतने कसकर धरती को या माटी को उखाड़ता कि मीलों दूर तक मट्टी उछलकर चले जाता, और बहुत बड़े बड़े गड्ढे होने लगे। और जमुना जी के तट पर पहुंचकर अपने सिंह से ऐसे ऐसे रेंगने लगा वो कि जमुना जी का जल जो है आगे ना बढ़कर उन गड्ढों में भरने लगा, और जमुना जी त्रस्त हो गए और जोर जोर से वो चिंघाड़ने लगा, मतलब वो आवाज करने लगा जोर जोर से, और उसकी ध्वनि सुनकर पशु पक्षी जो है मूर्छित गिर गए जमीन पर। तब किसी के हृदय में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके ध्वनि को सह सके। कभी कभी होता है ना कि आप रास्ते जा रहे हो, पीछे से कोई जोर से हॉर्न मारता है तो कैसे आपका हृदय एकदम रुक जाता है, तो वैसे अरिष्टासुर के चिल्लाने की वजह से चित्कार रहा था वो, उसके चित्कार से लोग जमीन पर भूमि पर मूर्छित गिर गए। खाली जो हृदय से, जिनका हृदय बहुत ही सख्त था या बहुत ही पराक्रमी थे, वो ही जीवित रहे या उनकी चेतना जो है जागृत रही, बाकी सब मूर्छित हो गए। और फिर अब अरिष्टासुर वृंदावन में पहुंचे, उसकी आंख लाल थी, उसके नाकों से गरम गरम श्वास निकल रहे थे, वो बार बार अपना मुंह खोलकर अपना दांत दिखा रहा था, अपने पैरों के खुर से वो जमीन में गड्ढा कर रहा था, ढूंढ रहा था, चित्कार दे देकर वो मानो जैसे कृष्ण को पुकार रहा था कि कहां हो पाखंडी धूर्त। भगवान कृष्ण जब देखे कि वृंदावन के सारे निवासी त्रस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो आज अरिष्टासुर से जाकर मिलते हैं, इतने दूर से वो आया है वृंदावन में, उसका ठीक से स्वागत करना चाहिए। तो भगवान सुंदर से तरह ढंग से उन्होंने अपनी धोती जो है खींच ली, अपना कमरपट्टा जो है कस लिया, अपनी उत्तरिया संभाली, बांसुरी निकाला और अपने मित्र से कहा, यहीं पर खड़े रहते हैं, ये मथुरा वृंदावन हाईवे है, यहां पर जरूर वो आएगा। भगवान ने अपने मित्र से कहा, थोड़ा पोज में खड़े रहो। अच्छा पोज देते हैं उसको। तो उनका मित्र जो है सुदाम खड़ा था वहां पर, और भगवान ने अपना दायां कंधा जो है, इसको क्या बोलते हैं, टोहनी बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको, कोपरा, टोहनी तो इसको बोलते हैं, हाँ एल्बो को बोलते क्या है हमें भी याद नहीं। तो भगवान ने अपना बायां हाथ जो है उसके कंधे पर रखा और त्रिभंग रूप में खड़े हो गए, एक पैर जो है दूसरे पैर के सामने, सिर्फ उनके उंगलियों पर रखकर हाथ में बांसुरी निकाल लिया और भगवान ने कहा, आजा अरिष्टासुर। जब अरिष्टासुर ने देखा कि ये बड़े पोज देकर बड़ा ही एकदम, तो उसको बड़ा क्रोध आया और उसने अपना सर नीचे किया, जैसे बैल सर नीचे करता मारने के पहले, सिंह सामने कर दिया। और इसके पहले कि भगवान को मारे, इसे उतना गुस्सा आ रहा था कि अपने सिंह से पहले जमीन को मार दिया उसने। जमीन पर उसने सिंह जो है अंदर घुसा दिए जमीन के भीतर, और फिर सिंह ऊपर करके मट्टी इतना उछाला जैसे कि होली खेल रहा हो। भगवान ने कहा, यह सब जो है कहीं और दिखाना, ले सामने तो आ जा। वो अपने स्थान से हिले ही नहीं, भगवान हिलने के लिए तैयार ही नहीं थे, वहीं पर मानो जैसे कि विग्रह के रूप में खड़े हो गए। तो अरिष्टासुर दौड़ते हुए आया, जब दौड़ रहा था तो सारा वृंदावन कांप रहा था, सब लोग जो है मीलों दूर भाग गए उससे, कोई देखना नहीं चाहता था उसकी ओर, सब इतने घबरा गए। भगवान ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं। उनका जो मित्र था वो भी बड़े आराम से रुका था कि जब कृष्ण है तो बाकी क्या, मतलब उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था ना, भगवान का भी हमेशा नॉट आउट रहे तो कोई चिंता नहीं थी उनके मित्र को, सुदाम को कोई चिंता नहीं थी, वो तो चुपचाप खड़ा था, जब तक इनका हाथ मेरे कंधे पर है कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तब से वो एक मुहावरा निकला है कि बड़ों का हाथ जब तक सर पर रहेगा, तो यहां पर हाथ की जगह ये उनके कंधे पर था। तो उन्होंने सोचा कि जब तक कृष्ण का हाथ मेरे कंधे पर है तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो दौड़ते हुए अरिष्टासुर जब नजदीक आया तो भगवान ने अपना हाथ मात्र निकाला, पैर तो बदला ही नहीं, पैर वैसे ही थे। मतलब सोचिए, एक ही पैर ठीक से जमीन पर खड़ा था, दूसरा पैर ऐसे उसी पोल में भगवान खड़े हो गए, खाली अपना हाथ निकाल दिया, अपना जो बांसुरी है अपने कमर पट्टे में कस दिया, और जैसे ही अरिष्टासुर उनके हाथ के पकड़ तक पहुंच गया, भगवान ने उसके सिंह पकड़े और धड़ाम करके उसको खाली ऐसे मोड़ोड़ दिया, ऐसे मोड़ोड़ कर अरिष्टासुर 2 मील दूर जाकर गिरा। भगवान ने कहा, इतना, मैंने तो खाली एक, मतलब कैसे ड्राइविंग करता है ना आदमी, तो थोड़ा से ऐसे, और गाड़ी पूरी मुड़कर, गाड़ी जानी है जालना और मुड़कर चली जाती है बंबई की ओर, तो इतना ही खाली भगवान ने मोड़ा। और वो अरिष्टासुर पता नहीं कितने बार चक्कर खाकर 2 मील दूर गिरा, और इतने कसकर गिरा वो कि उसके फेफड़ों में से सारा सांस निकल गया। मतलब वो जैसे कभी कोई बहुत पिटता है तो पूरे सांस उसकी निकल जाती है ना, उसकी सांस पूरी निकल गई, उसका पेट मानो जैसे गले में आ गया हो, उसके हाथ पैर जो है ठंडे पड़ गए कांपने, जैसे कि रक्त प्रवाह पूरा बंद हो गया हो। वो बेचारा जब बेचारा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब वो जाकर गिरा तो उसको ऐसे लगा जैसे कि अभी अभी उसका जन्म हुआ है, या अभी अभी हॉस्पिटल से बाहर निकला है, लड़खड़ा रहा था बेचारा। 2 मिनट पूरे उसको लगे कि मैं कहां हूं, मैं कौन हूं। जब उसे याद आया, कह रहे मैं अरिष्टासुर हूं, अभी कृष्ण को मारने आया हूं, और इस बालक ने अपना पैर का पैंतरा भी नहीं बदला और मुझे इतने दूर फेंका है, तो उसको इतना गुस्सा आया कि इसके पहले कि उसके हाथ और पैर में कुछ जान आए, उसके नाक में गरम गरम सांस आ गई। अब अच्छा था कि वो हॉट एयर बलून नहीं आते, ऊपर उड़ जाता। इतना गुस्सा आया उसे, और फिर उस गुस्से के कारण वो फिर से अपने चारों पैरों पर खड़ा हुआ। उसके मुंह से रक्त गिर रहा था, उसके कान जो है जन जन, मानो जैसे कि अंदर कान के सारे नसें फट चुकी हों। उसका सर जो है चकरा रहा था अभी भी, लेकिन गुस्सा इतना आया कि मुझे किसी ने इतना पीटा है कि सब कुछ बाकी अपनी परेशानी भूलकर सारा अपना गुस्सा उसने केंद्रित किया, अपनी सारी शक्ति जो है उसने फिर से एकत्र किया और कृष्ण के ऊपर ध्यान केंद्रित करके, जैसे एक योगी भगवान के चरणों पर ध्यान केंद्रित करता है, अरिष्टासुर ने अपनी सारी शक्ति और सारा ध्यान जो है वो कृष्ण के ऊपर केंद्रित किया और उसने कहा कि इस बार तो मैं इस व्यक्ति को छोड़ूंगा नहीं। पिछली बार मैंने सोचा कि ये बच्चा है, थोड़ा सा मार दूंगा तो मर जाएगा, लेकिन ये बच्चा कच्चा नहीं है, ये पक्का है, इसको अब मुझे बड़े ध्यान से मारना होगा। तो उन्होंने क्या किया, पूरा शक्ति केंद्रित करके फिर से कृष्ण की ओर दौड़ने लगे, दौड़ने लगे, दौड़ने लगे। 2 मील दूर से दौड़ रहे थे, ज्यादा समय नहीं लगा क्योंकि बहुत विशाल का है ना, पूंछ अपनी ऊपर की, और जब पूंछ ऊपर की तो आसपास जितने बादल थे सब तितर बितर हो गए, उनके पूंछ से सारे बादल जो है टूट टाट कर इधर उधर जो है बिखर गए, इतनी ऊंची उनकी पूंछ थी, इतना शक्ति था। और गरम मुंह से, नाक से गरम श्वास निकलते हुए और पूरे तेजी के साथ वो कृष्ण की ओर दौड़े कि इनको पैरों तले ही दबा दूंगा। तो भगवान ने फिर से उसके सिंह पकड़ा और इस बार उसको जो उल्टा किया, भगवान ने अपना हाथ छोड़ा नहीं, वहीं पर उल्टा कर कर जब वो चारों काने चित हो गया पूरी तरह से, तो भगवान ने सोचा कि अब इसको लात मारना है मुझे। अभी तो ये प्रथा बंद हो गई है लात मारने की, नहीं दूसरी प्रथा समझा रहा हूं कि जब धोबी घाट आप जाते थे पहले, धोबी घाट पर ऐसे होती थी कि कुछ कपड़े जो है हाथ से पटक पटक धोबी धोता है, कुछ कपड़े जो है वो कहीं पर उन्हें पकड़कर उन्हें मोड़ मोड़ कर उसे उसमें से पानी निकालता है, और कुछ कपड़े जो धोबी है वो पैर से पीट पीट कर धोता है। देखा यार, पैर से वो कपड़ों के ऊपर धोबी जो है उसे मसलता है, जिससे कि उसके। तो भगवान उसे सिर्फ लात नहीं मारने लगे बल्कि उसको पैरों से, देखिए एक पैर आप किसी के शरीर पर आप पैरों से चढ़ते हो तो उसका मालिश भी होता है, लेकिन धोबी मालिश नहीं करता कपड़े को, वो पीटता है उसको थड़ाक थड़ाक। तो जिस प्रकार से धोबी कपड़ों को पीटता है, उसी प्रकार से भगवान अरिष्टासुर के शरीर पर खड़े होकर उसको पीटने लगे, और ऐसी पिटाई और ऐसी धुलाई हुई अरिष्टासुर की कि सारी गंदगी निकल गई, उसके प्राण चले गए। और भगवान का दर्शन करते हुए अरिष्टासुर जो है परलोक से धार गया। अच्छा, ये सारी घटना जो हुई वो गोवर्धन के पास हुई, क्योंकि वृंदावन के सारे लोग भाग गए थे, तो भगवान ने सोचा कि इसको वृंदावन में क्यों मारूं, वृंदावन के वनों में नहीं मारता हूं, गोवर्धन के पास। तो गिरिराज जी के पास खड़े होकर भगवान ने ये सारी लीला की, अरिष्टासुर मर गया। तो जितनी गोपियां थी उनको किसी ने समाचार पहुंचाया कि अरे सब कुछ ठीक हो गया है, वो जो राक्षस था मर गया। तब तक भगवान ने अपने मित्रों से कहा कि चलो डाल दो वृंदावन न्यूज में कि मैंने और एक राक्षस को मार दिया है, समाचार भेज दो। तो समाचार भेजा गया और भगवान ने कहा कि अगर कोई इंटरव्यू लेने के लिए आना चाहता है तो आ सकता है। तो भगवान चाहते थे कि गोपिकाएं जो हैं आकर इंटरव्यू लें। ये सब संकेत वृंदावन के लोग जानते हैं, इसलिए वृंदावन में अगर कोई इंटरव्यू लेने जाता है तो ऐसे नहीं जाता, सब समझदार लोग। तो गोपियां समझ गई कि ये जो है अपने मुंह से ही अपना गुणगान हमारे सामने करना चाहते हैं, चलो हम भी कुछ कम नहीं है। तो गोपियां वहां पर पहुंची और गोपियों को आते हुए देखा तो भगवान ने सुदाम से कहा, सुदाम जरा कहना तो मैंने क्या किया, जोर जोर से बोलो।
तो उनके जो मित्र थे वो जोर जोर से बोले, अरे कृष्ण क्या कमाल कर दिया तुमने, अरे मैं तो तुम्हारे साथ था, सब आंखों देखा हाल बताता हूं। अरे वो राक्षस, वो तो यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक उसका शरीर इतना बड़ा था, और ब्रह्मा जी भी घबरा कर उसके पीछे छुप गए थे, बड़ा चढ़ाकर बोलने लगा उसे। तब तक गोपियां वहां पर पहुंची और कहे कि क्या ये सब लगाए हुए, कौन सा राक्षस, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, हम तो बड़े आराम से बैठे हुए थे गिरिराज जी के शरण में, कौन सा राक्षस है। तो भगवान ने कहा तुमने देखा नहीं, जाओ देखो वृंदावन में कितना हालत खराब हो गया, जाओ जमुना जी को देखो कितना। अरे वो तो जमुना जी कभी कभी ऐसे करते रहते हैं, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, गोपियों ने कहा। तो भगवान ने कहा देखो ये ऐसे मानेंगे नहीं, जाओ इनको दिखाओ कहां पर मैंने राक्षस को मारा है, दिखाओ कि वो कैसे राक्षस मरा हुआ। तो गोपियों ने कहा ठीक है, ऐसे तो मानेंगे नहीं, अगर तुम्हारे पास कुछ प्रमाण है तो प्रमाण को देखकर मानेंगे। तो सारी गोपियां राधा रानी, ललिता देवी, विशाखा देवी, तुंग विद्या, चित्रा, इंदुलेखा, रूप मंजरी, प्रति मंजरी, सब कोई कहे। तो सुदाम ने देखा ये देखो यहां से लेकर वहां तक ये शरीर सिर्फ राक्षस का। तो गोपियों ने ध्यान से देखा, अरे ये गाय है क्या। तो सुदाम ने सोचा चलो कम से कम पता तो चला इनको कि क्या है ये। बोला हां गाय के स्वरूप में ही, गाय नहीं बैल है, बैल के रूप में राक्षस आया था, और तुम कहते हो राक्षस आया था, ये तो बैल दिख रहा है हमें, और देख नहीं रही हो कितना बड़ा शरीर है। तो क्या हुआ, कितना भी बड़ा हो है तो बैल। उसने सोचा ये देखो ये गोपिया आ बैल मुझे मार हो गई। तो गोपियां गई कृष्ण के पास, गई तुमने उसे मारा कृष्ण, अरे मतलब कॉलर वॉलर निकाल कर ऐसे बोलने लगे, बिल्कुल मैंने मारा है, मेरा फोटो वोटो लो, चाहिए तो तुम भी मेरे साथ फोटो ले सकते हो, सेल्फी आ जाओ। गोपियों ने कहा सेल्फी, तुम्हारा चेहरा देखेंगे नहीं, तुम्हारा नाम नहीं लेंगे। कृष्ण अरे ऐसे क्यों, ये तो बहुत अजीब हो गया, जो भी गौ हत्या करता है उसका संगति हम करते नहीं, उसका नाम लेते नहीं। कौन सा गौ हत्या, अरे मैं तो गोपाल हूं, तुमने मारा ना, अरे वो बैल है, तो गौ समाज का तो है, गाय माता है बैल पिता है। अरे बाप रे, ये माता पिता के चक्कर में कहां है, अरे राक्षस है वो, अरिष्टासुर कंस ने भेजा था। गोपी ने कहा देखो ऐसी कहानी हमको मत सुनाओ, जाओ वृंदावन में बहुत सारे बूढ़े बैठे हुए हैं उनको सुनाओ ये सारी कहानी, हमको नहीं सुनना, तुमने बैल की हत्या की है। भगवान ने कहा चलो अब ठीक है, हत्या की, अब क्या करूं मैं, बोले हत्या की है जाकर सारे तीर्थों में स्नान कर कराओ, नहीं तो हम कभी तुम्हारे साथ तुम्हारा संग नहीं करेंगे। भगवान ने कहा ये तो अजीब बात है, एक तो वृंदावन की रक्षा करो, असुर को मारो, ऊपर से मुझ पर ही ताना कसा जा रहा है, अब मुझे ही नाम रखा जा रहा है, मुझसे कहा जा रहा है सारे तीर्थों में स्नान करने के लिए। गोपी ने कहा देखो हम कुछ नहीं जानते, हमें पता है धर्म क्या है, धर्म के अनुसार तुमने बैल की हत्या की, अब इस पाप से तुम तभी मुक्त हो सकते हो जब सारे तीर्थों में स्नान करोगे। कौन से तीर्थ, पूरे ब्रह्मांड में जितने तीर्थ हैं, ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक जितने तीर्थ है सबने स्नान करना चाहिए। पढ़ो, शास्त्र पढ़ते नहीं ऐसे खाली भगवद गीता का प्रवचन करते रहते हो, शास्त्र पढ़ा करो थोड़ा। भगवान ने कहा मैं क्या शास्त्र पढ़ूं, मैंने तो ये सब कुछ कहा है। तो गोपियों ने कहा जब तक तीर्थों में स्नान नहीं करोगे तब तक हम तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, तब तक हम तुम्हारे साथ कोई संग नहीं करेंगे, तुम हमारे लिए क्या हो, अछूत। भगवान ने कहा ये तो बहुत बुरा हुआ, अब क्या करना चाहिए। तो भगवान ने कहा सुदाम कर लो स्नान सब में। सुदाम ने कहा हां कर लो। तो भगवान ने अपनी एड़ी, पैर का पिछला हिस्सा होता है ना, उससे एक गड्ढा किया, और फिर भगवान ने एक अपने फोन से एक नंबर डायल किया जो सारे तीर्थों के पास पहुंचा और कहा तुरंत आओ यहां पर। देखते ही देखते पूरे ब्रह्मांड के तीर्थ वहां पर आ गए, सब जी हुजूर, नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, दंडवत, हरे कृष्णा, ऐसे करते हो सब आगे, वणक्कम, सारे तीर्थ आ गए वहां पर। क्या आज्ञा है प्रभु, इस गड्ढे में सब कोई भर जाओ। अभी तक ये सारे तीर्थ अपने आप को बहुत महान समझते थे, मैं इससे बड़ा हूं, मैं इससे बड़ा हूं, मैं इससे बड़ा हूं। भगवान ने सोचा चलो सबका ये अहंकार जो है ना यहीं पर खत्म करते हैं, सब के सब इस गड्ढे को भर दो। सबने गड्ढे को देखकर कहा इसको, भगवान ने कहा नहीं तो किसको, इसको, इसी को भरना। सारे तीर्थ जो हैं जल रूप में उसमें समा गए और जब सारा तीर्थ उसमें समा गया, सारे जल रूप में तीर्थ उस भगवान ने जो एड़ी से गड्ढा किया तो उसमें समा गया, तो भगवान ने जाकर उसने स्नान किया और स्नान करके भगवान बाहर निकले और बाहर निकल के कहा सुदाम सब उचित और योग्य तरीके से हुआ। सुदाम ने कहा बिल्कुल जैसा आपने शास्त्रों में कहा है वैसे ही शास्त्रों के वाक्य सत्य करने के लिए आपने कार्य किया। तो देखिए भगवान भी शास्त्र के वचनों का पालन करते हैं। यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्त एव तिरोचना, क्योंकि भगवान शास्त्रों का पालन करते हैं इसलिए भगवान के भक्त भी शास्त्रों के उपदेशों का पालन करते हैं। तो सारे गोपियों ने कहा चलो कृष्ण हमने तुमको माफ किया, अब तुम चाहो तो हमारे साथ बैठ सकते हो। भगवान ने कहा सुदाम कौन है हित, ये कौन है हित, कौन है ये? प्रभु यही तो है जिन्होंने ये सारा पूरा षड्यंत्र किया, ना ना तेना ओळखत नहीं। तो सुदाम थोड़े से वो चिंतित हो गए, बोले प्रभु ये गोपियां हैं तो इनको बोलो पीना नहीं चाहिए, उससे मुझे पीने वाले लोग अच्छे नहीं, नहीं ना ना गोपी मतलब पीते नहीं, ये गोपी हैं, ग्वाल हैं, गोपी हैं। भगवान ने कहा अच्छा 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 ठीक है, इनको बोलो अपने अपने घर जाएंगे। अब सारी गोपियां परेशान हो गई कि अरे भगवान ही हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, भगवान ही हमारा त्याग कर रहे हैं, तो फिर ये तो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, उन्होंने एक व्यक्ति को अपना दूत बनाया और कहा कि जाओ पूछो भाई क्यों ऐसा कर रहे हैं। भगवान ने कहा देखो इस जल में स्नान करके मैं तो शुद्ध हो गया, सारे पापों से मुक्त हो गया, गोहत्या पाप से भी मुक्त हो गया, बैल हत्या जो भी, लेकिन मुझ पर गलत आरोप लगाकर तुम लोग जो पापी हो गए हो तो मैं शुद्ध व्यक्ति तुम जैसे पापी लोगों के साथ संग कैसे करूंगा, तुम पापी हो। तो सारी गोपियां घबरा गईं कि अगर भगवान हमसे हमारा संग नहीं करेंगे, हमें आशीर्वाद नहीं देंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो आंखों में आंसू आ गए उनके, बोले कि हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई, हम तो बस आपकी लीला देखना चाहते थे, हम तो चाहते थे कि आपका वैभव जो है विश्व भर में प्रसारित हो, कि सारे तीर्थ भी आपके सेवक है दास है। भगवान ने कहा ये सारा उपदेश अभी मत सुनाओ, तुम लोग ने भी गलत किया है, इसलिए जब तक तुम शुद्ध नहीं होगे तब तक मैं तुम्हारे साथ बैठ नहीं सकता, संग नहीं कर सकता, तुम्हें भी शुद्ध होना चाहिए। तो गोपियों ने कहा कैसे शुद्ध हो, भगवान का बहुत आसान है, ये मैंने तैयार किया है ना, फर्स्ट क्लास स्विमिंग पूल ऑल इन वन, इसमें आकर स्नान करो। सारी गोपियां हो गई हाँ तैयार हम भी स्नान करेंगे। तो राधा रानी ने कहा कि देखो सबसे पहले जो तुम में सबसे घमंडी है उसने स्नान करना चाहिए। हमें कौन सबसे घमंडी, कोई घमंडी नहीं, नहीं ना है ना वो एक है ना उसका नाम है राधा, वो सबसे ज्यादा चिल्ला रही थी कि मैंने गलत किया मुझे स्नान करना चाहिए, सबसे पहले वो स्नान करेगी उसके पीछे सब कोई। तो सारी गोपियां राधा रानी के पास गए, राधा रानी ने कहा बिल्कुल नहीं करूंगी मैं स्नान। अब सारी गोपियां और परेशान, अरे ये स्नान नहीं करेंगे तो हम स्नान नहीं करेंगे, हम स्नान नहीं करेंगे तो पावन नहीं होंगे। तो ये समाचार कृष्ण के पास पहुंचा, कृष्ण ने सोचा अरे ये तो गड़बड़ हो गया, मैंने ज्यादा ही कुछ बोल दिया। तो जाकर बोलने लगे राधा रानी थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया, देखो ऐसा कि नहीं भी करोगे स्नान तो चलेगा। राधा रानी ने कहा हमारे ऊपर कोई आरोप लगाए जब तक वो आरोप हटता नहीं तब तक हम शांति से रहते नहीं। कृष्ण ने कहा, अरे ठीक है ना, तो ये जल है, स्नान कर लो। बोले नहीं, तुमने उसमें स्नान किया, उसमें तुम्हारे सारे पाप हैं, उसमें स्नान कर हम और पापी बन जाएंगे, तो मैं तुम्हारे लिए नया करता हूँ, बुलाओ सारे तीर्थों को, लो मैं अभी फोन लगा तो एक तीर्थ। राजा ने कहा बिल्कुल बंद करो, तुम्हारे तीर्थ तुम्हारे जैसे ही है, सबके सब, किसी के ऊपर हम भरोसा नहीं रख सकते। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, फिर देखो कोई तीर्थ नहीं है तो स्नान कहाँ करोगे, छोड़ दो ये स्नान, मंत्र स्नान कर लो। नहीं, मंत्र स्नान वान नहीं करते हम, ये सब तुम्हारा ढोंग है। तो भगवान ने कहा ये तो मैं ही फंसा, अब कैसे स्नान करोगे। बोले हमारे वृंदावन में भी बहुत सुंदर पावन जल है। कौन सा जल है भाई? मानसी गंगा। वो भगवान ने खुद मंगाया, मानसी गंगा है। तो मानसी गंगा से भगवान ने कहा ठीक है, मैं मानसी गंगा को बोलता हूं, वो आ जाएगी। तुम अगर तुमने मानसी गंगा को बुलाया तो उसमें भी स्नान नहीं करेंगे। तो भगवान चुप हो गए, बोले आपको जो करना है करो। तो उस स्थान से मानसी गंगा 2-3 मील दूर थी, तो गोपियों ने एक लाइन बनाया और राधा रानी के हाथ में सुंदर कंगन था। राधा रानी ने उस कंगन को निकाला और उन्होंने गड्ढा किया उस कंगन से, उसका आज भी नाम है कंगन तीर्थ। गड्ढा किया राधा रानी ने और गोपियों ने लाइन बनाया और मटकियां भर भर के एक गोपी दूसरे को देती, दूसरी गोपी तीसरे को देती, पसीना पसीना हो गई। और इस प्रकार से मानसी गंगा के जल से उन्होंने जो राधा रानी ने गड्ढा किया था उसको भर दिया। और जब गड्ढा भर गया तो राधा रानी सहित सारी गोपियों ने उसने स्नान किया। अब सारी गोपियों ने उसने स्नान करके जब बाहर निकल आई तो कृष्ण ने कहा अब तो तुम पवित्र हो गई। राधा रानी ने कहा हम पवित्र हो गए लेकिन अभी भी हम आपका संगति नहीं करना चाहते। कृष्ण ने कहा कि देखो ये सब हमने इसलिए किया ताकि तुमको हम संतुष्ट कर सकें। हमारी ना 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 उस समय जो कृष्ण के कुंड में जो सारे तीर्थ थे वो विचार करने लगे कि कृष्ण ने तो हमें स्नान किया लेकिन अगर राधा रानी स्नान नहीं करेंगे तो हम अधूरे रह जाएंगे, तो थोड़े दुखी हो गए। तो कृष्ण ने कहा राधा रानी से देखो ये सारे तीर्थ दुखी हैं और मेरी भी इच्छा है कि मैंने जो कुंड निर्माण किया उसमें तुम स्नान करो। तो सारे कुंड जो है आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, राधा रानी से प्रार्थना किए और कहे राधा रानी से कृपा करके आप हमें स्नान कर लें। राधा रानी ने कहा नहीं हम स्नान नहीं करें। कृष्ण ने कहा ठीक है थोड़ा ये जल में भर देता तुम्हारे कुंड में तब तो स्नान कर लो। तो राधा रानी ने कहा नहीं दोनों जलों में कोई मिक्स नहीं होना चाहिए। तो सारे तीर्थ जो हैं वो इतने मायूस हो गए और सारा ब्रह्मांड मायूस हो गया। तब राधा रानी ने कहा ठीक है आकर मेरे कुंड में भर जाओ। तो भगवान कृष्ण का जो कुंड था उसका जो बांध था उस बांध को तोड़कर कृष्ण के कुंड में से थोड़ा जल जो है राधा रानी के कुंड में चला गया और फिर राधा रानी और बाकी सखियों ने उसमें स्नान किया। और स्नान करने के बाद फिर जब राधा रानी बाहर निकली तो राधा रानी बहुत प्रसन्न थी और राधा रानी ने कहा कि हे कृष्ण हमारी संतुष्टि के लिए तुमने इतना सुंदर कुंड निर्माण किया है और इसके जल से इतना मन जो है हमारा संतुष्ट हो गया है, इसलिए आज से मैं ये घोषित करती हूँ कि ये जो तुम्हारा कुंड है ये कृष्ण कुंड श्याम कुंड, इस जल में जो भी स्नान करेगा उसे कृष्ण का प्रेम मिलेगा। और कृष्ण ने कहा हे राधा रानी तुमने हमारे कुंड से जल स्वीकारा और इतना कष्ट करके मानसी गंगा का भी जल ले आया, तुम्हारा कुंड अति पावन है, ये राधा कुंड है और क्योंकि इस कुंड में तुमने स्नान किया तो मैं ये घोषित करता हूं आने वाले अनंत काल तक कि जो भी व्यक्ति इसमें स्नान करेगा वो मुझे बहुत प्रिय होगा। जो भी व्यक्ति राधा कुंड में स्नान करेगा वो मुझे बहुत प्रिय होगा और मेरे मन में जो तुम्हारे लिए सेवा भावना है प्रेम है वही सेवा भाव और प्रेम उन भक्तों के मन में भी आएगा। तो जब तक राधा रानी और सखियों ने कुंड में जल लाने का प्रयास किया था तब तक शाम का होते होते दोपहर में अरिष्टासुर मरा था। उसके बाद भगवान ने तुरंत सारे तीर्थों को बुलाकर मध्य दोपहर के थोड़े समय बाद एक मुहूर्त बाद तक उसमें स्नान किया और फिर रात तक सारी गोपियां कष्ट कर राधा रानी ने जो कुंड बनाया था उसमें जल भरा और रात को मध्य रात्रि को कार्तिक मास के जो कृष्ण पक्ष का अष्टमी है उस दिन राधा रानी के कुंड में
जल भरा और राधा रानी ने स्नान किया और इस प्रकार से राधा रानी के कुंड का इस जगत में प्राकट्य हुआ। कृष्णाष्टमी कार्तिक मास के, कार्तिक मास के कृष्णाष्टमी को ये कुंड जो है प्रकट हुआ है और जो भी इस कुंड में स्नान करता है उसके सारे पाप और उसके कई पीढ़ियों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, कृष्ण के प्रति बहुत आकर्षण निर्माण होता है और कृष्ण को वह व्यक्ति बहुत प्रिय हो जाता है। और कृष्ण ने कहा है जिस प्रकार राधा रानी मुझे प्रिय है उसी प्रकार से राधा रानी का जो कुंड है राधा कुंड वो मुझे अति प्रिय है। आज वही तीर्थ तिथि है, अष्टमी है कृष्ण पक्ष कार्तिक मास का। और आज के दिन बहुत सारे भक्त जो हैं वृंदावन जाते हैं गिरिराज जी के निकट राधा कुंड के तट पर, और ठीक रात के 12 बजे जब राधा कुंड प्रकट होते हैं सारे भक्त उसमें स्नान करते हैं राधा रानी का नाम लेकर और राधा रानी का गुणगान करते हुए। तो इस तिथि को कहा जाता है बहुलाष्टमी। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री राधा कुंड आविर्भाव तिथि की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। तो कार्तिक मास का ये बहुत महत्वपूर्ण एक तिथि है बहुलाष्टमी, राधा कुंड आविर्भाव तिथि। हरे कृष्ण। तो ये दामोदर मास है, अब हम जो है दामोदर आरती गाएंगे और सभी को अवसर मिलेगा कि दीप दान कर सकें। ऐसा कहा गया है कि दामोदर मास में जब हम भगवान दामोदर को कृष्ण को दीप अर्पण करते हैं तो फिर हमें उतने ही फल प्राप्त होते हैं, पुण्य प्राप्त होता है जितना कि 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से प्राप्त हो, या फिर पूरे ब्रह्मांड के तीर्थ दर्शन करने से जो लाभ प्राप्त होता है वही लाभ प्राप्त होता है अगर भगवान दामोदर को हम दीप अर्पण करें। तो हर दिन इस मास में भगवान कृष्ण को जो श्री दामोदर जी हैं उन्हें हमें दीपार्पण करना चाहिए। तो अब दामोदर अष्टकम गाएं।